शांति 1972 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। अपने को मोती व मन का समझते हो? मोती व मनके की वैल्यू किसमें होती है? मन का व मोती माला से अलग होते हैं तो उसकी वैल्यू कम क्यों होती है? माला में पिरोने से उनकी वैल्यू होती है, अलग होने से कम क्यों होती है? कारण, संगठन में होने के कारण वह मोती मन का शक्तिशाली हो जाता है। एक से दो भी आपस में मिल जाते हैं तो दो को 11 कहा जाता है, एक को एक ही कहा जाएगा। दो मिलकर 11 हो जाते हैं तो कहां एक कहां 11, इतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दो के बदली 11 कहा जाता है। संगठन की शक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसे कहने में आता है। आप अपने को कौन सा मोती समझते हो? माला का मोती वा इंडिपेंडेंस मोती हो? अपनी वैल्यू को देखते हुए, अपनी शक्ति को देखते हुए यह अनुभव करते हो कि हम माला के मन के हैं? एक दो को ऐसे संगठन के रूप में पिराए हुए वैल्यूएबल मोती समझते हो? दूसरे भी आपको समझते हैं वा सिर्फ आप ही अपने को समझते हो? जैसे कोई विशेष करते हैं वा कोई भी रीति विजयी बनकर आते हैं तो उनको मेडल मिलता है ना? वैसे ही जो अब तक पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल में लेने के लिए ही बीच बीच में यह संगठन होता है। तो इस संगठन में हर एक ने अपना संगठित रूप में चलने का, संगठन के शक्ति की वैल्यू का मेडल लिया है। यूनिवर्सिटी में आई हो ना? तो अब तक के पुरुषार्थ व ईश्वरीय सेवा का सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए ना? सभी एक दो से कहां तक संतुष्ट है व एक दो के समीप कितने हैं? इसका सर्टिफिकेट लेना होता है। एक तो है अपने संगठन में व संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेही रहने का मेडल व इनाम। दूसरा है ईश्वरीय सेवा में अपने पुरुषार्थ से ज्यादा प्रत्यक्षता करना, इसका इनाम। तीसरा सिर है जो जिस स्थान के निमित्त बने हुए हैं उस स्थान की आत्माएं उनसे संतुष्ट है व कोई स्वयं सभी से संतुष्ट है। अगर स्वयं भी संतुष्ट नहीं तो भी कमी रही, और आने वालों में से एक भी कोई संतुष्ट नहीं है तो यह भी कमी रही। टीचर से सभी संतुष्ट हो, टीचर की पढ़ाई व संबंध में जिसको आप लोग हैंडलिंग कहते हैं उससे भी संतुष्ट है तो इसका भी इनाम होता है। पहले शुरू में माला बनाते थे, किस लिए? उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। जिस समय जो जिस स्टेज पर है उसको उस स्टेज का मिलने से खुशी होती है। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए और एक दो की देखरेख कराने के लिए यह साधन बनाते थे। इसका भाव यह नहीं था कि वह कोई फाइनल स्टेज का मेडल है, यह है समय की पुरुषार्थ की बलिहारी का। इससे उमंग उल्लास आता है, रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन किस पुरुषार्थम है व किसका पुरुषार्थ में अटेंशन है व पास होकर विजय के अधिकारी बने हैं। इसको देखकर भी खुश होते हैं। आप लोग अब भी अपनी क्लासेस में किसी को इनाम देते हो ना? इनाम कोई बड़ी चीज नहीं है, भले ही एक रुमाल दो लेकिन उसकी वैल्यू होती है। जो पुरुषार्थ किया उस विजय की वैल्यू होती है, ना कि चीज की। आप किसी को थोड़ी सेवा का इनाम देते हो व क्लास में नाम आउट करते हो तो आगे के लिए उसको छाप लग जाती है, उमंग उत्साह का तिलक लग जाता है। कोई कोई तो विशेष आत्माएं भी विशेष कर्तव्य करते रहते हैं ना, फिर भी निमित्त बने हुए हैं। जरूर कोई श्रेष्ठता व विशेषता है, तब तो ड्रामा अनुसार समर्पण होने के बाद, सर्वस्व त्यागी बनने के बाद औरों की सेवा के लिए निमित्त बने होना। हर एक में कोई विशेषता जरूर है, एक दो की विशेषता का भी एक दो को परिचय होना चाहिए, कमियों का नहीं। आप लोग आपस में जब संगठन करते हो तो एक दो तरफ के समाचार किस लिए सुनाती हो? हर एक में जो विशेषता है वह अपने में लेने के लिए। हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण प्राप्त होता है, अपना नहीं, मेरा गुण नहीं है, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ। इसमें अभिमान नहीं आवेगा। अगर अपना गुण होता तो पहचानने से ही होता, लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो। पहले तो भक्ति में गाते थे कि हम निर्गुण हारे में कोई, तो यह स्वयं का गुण नहीं कहेंगे, नॉलेज द्वारा स्वयं में भरते जाते हो, इसलिए विशेषता का गुण वर्णन करते हुए यह स्मृति रहे कि नॉलेज द्वारा हमें प्राप्त हुआ। तो यह नॉलेज की बड़ाई है, ना कि आपकी। नॉलेज फुल की बड़ाई है। उसी रूप से अगर एक दो में वर्णन करो तो इसमें भी एक दो से विशेषताएं लेने में लाभ होता है। पहले आप लोगों का यह नियम चलता था कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है इसका वर्णन करते थे। ऊपर ऊपर की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियों पर किस पुरुषार्थ से विजय पा रहे हैं वह एक कदम में वर्णन करते थे। इससे एक दो को एक दो का परिचय होने के कारण जिसमें जो विशेषता है उसका वर्णन होने से ऑटोमेटिकली उसकी कमजोरी तरफ अटेंशन कम हो जाएगा, विशेषता तरफ ही अटेंशन जाएगा। पहले आपस में ऐसे सूक्ष्म रूह रूहान करते थे, इससे लाभ बहुत होता है। एक दो के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की विशेषता ही आपस में वर्णन करो तो भी अच्छा वातावरण रहेगा। जब टॉपिक ही यह हो जाएगा तो और टॉपिक्स ऑटोमेटिकली रह जाएंगे। तो यह आपस में मिलने का रूप होना चाहिए और हर एक की विशेषता बैठ अगर देखो तो बहुत अच्छी है। ऐसे हो नहीं सकता जो कोई समझे मेरे में कोई विशेषता नहीं। इससे सिद्ध है वह अपने आप को जानते नहीं है। दृष्टि और वृत्ति ऐसी नेचुरल हो जानी चाहिए जैसे आप लोग दूसरों को मिसाल देते हो कि जैसे हंस होते हैं तो उनकी दृष्टि किसमें जावेगी। कंकड़ों को देखते हुए भी वह मोती को देखता है। इसी प्रकार नेचुरल दृष्टि व वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी की कमजोरी व कोई भी बात सुनते व देखते हुए भी वह अंदर नहीं जानी चाहिए। और ही जिस समय कोई की भी कमजोरी सुनते व देखते हो तो समझना चाहिए यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सभी एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। अगर माला के बीच ऐसा वैसा मोती होता है तो सारी माला की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब एक ही माला के मन के हो तो क्या वृत्ति होनी चाहिए कि यह मेरी भी कमजोरी हुई। जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो अपने में कमजोरी देखेंगे, वह मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन ही उसको खत्म कर देते, कब वर्णन नहीं करेंगे। जब अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो तो दूसरे की कमजोरी भी क्यों वर्णन करते। फलाने ने साथ नहीं दिया वा यह बात नहीं की इसलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती वा मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात फलानी आत्मा विघ्न रूप है। यह तो अपनी ही बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर ठहरने की कोशिश करते हो, लेकिन वह आधार फाउंडेशन लेस है, इसलिए वह ठहरता नहीं है। थोड़े समय बाद वही आधार नुकसानकारक बन जाता है। इसलिए होली हंस होना, तो होली हंसों की चाल कौन सी होती है? हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। तो ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है। हम सभी एक है, यह स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ चल रहा है। यही इस संगठन की विशेषता व भिन्नता है, जो सारे विश्व में कोई भी संगठन की नहीं। सभी देखने वाले, आने वाले, सुनने वाले क्या वर्णन करते कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना सभी एक जैसा है। यही विशेषता गायन करते हैं। तो जो एकता व एक बात, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति का गायन है, उसी प्रमाण अपने आप को चेक करो। वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। कारण क्या चीज है? अभी तो आगे बढ़ते जा रहे हो ना। जब सृष्टि के परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन की जिम्मेवारी को उठाने की हिम्मत रखने वाले हो, चैलेंज करने वाले हो, तो कारण फिर क्या चीज है? कारण की रचना कहां से होती है? कारण का बीज क्या होता है? किस न किस प्रकार के, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संपर्क व संबंध में आने की कमजोरी होती है। इस कमजोरी से ही कारण पैदा होता है, तो रचना ही व्यर्थ है ना? कमजोरी की रचना क्या होगी? जैसा बीज वैसा फल। तो जब रचना ही उल्टी है, तो उसको वहां ही खत्म करना चाहिए या उसका आधार ले आगे बढ़ना चाहिए। फलाने कारण का निवारण हो तो आगे बढ़े, कारण का निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघ्न हटेंगे। अभी यह भाषा भी चेंज करो। आप सभी को निवारण देने वाले हो ना? आप लोगों के पास अज्ञानी लोग कारण का निवारण करने आते हैं ना, जो अनेक प्रकार के कारणों को निवारण करने वाले हैं, वह यह आधार कैसे ले सकते? जब सभी आधार खत्म हुए, तो फिर यह देह अभिमान संस्कार ऑटोमेटिकली खत्म हो जावेंगे। यह बातें ही देह अभिमान में लाती है। बातें ही खत्म हो जावेंगी, तो उसका परिणाम भी खत्म हो जावेगा। छोटे छोटे कारण में आने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान आ जाते हैं। तो क्या अब तक देह अभिमान को छोड़ा नहीं है? बहुत प्यारा लगता है अभी अपनी भाषा और वृत्ति सभी चेंज करो। कोई को भी किस समय भी किस परिस्थिति में किस स्थिति में देखते हो, लेकिन वृत्ति और भाव अगर यथार्थ है तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल्याण की वृत्ति और भाव शुभ चिंतक का होना चाहिए। अगर यह वृत्ति और भाव सदा ठीक रखो तो फिर यह बातें ही नहीं होंगी। कोई क्या भी करे, कोई आपके विघ्न रूप बने, लेकिन आपका भाव ऐसे के ऊपर भी शुभ चिंतकपन का हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी वा होली हंस, जिसका आपके प्रति शुभ भाव है उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, वह कोई बड़ी बात नहीं। कमाल ऐसी करनी चाहिए जो गायन हो, अपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है। उपकारी पर उपकार करना यह बड़ी बात नहीं। कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अड़ोल भाव हो, बात पर भाव न बदले, सदा अचल अटल भाव हो, तब कहेंगे होली हंस है। फिर कोई बातें देखने में ही नहीं आवेंगी, नहीं तो इसमें भी टाइम बहुत वेस्ट होता है। बचपन में तो टाइम वेस्ट होता ही है, बच्चा टाइम वेस्ट करेगा तो कहेंगे बच्चा है, लेकिन समझदार अगर टाइम वेस्ट कर रहा है, बच्चे का वेस्ट टाइम नहीं फील होगा, उनका तो काम ही यह है। तो आप अब जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हुए हो, वह स्टेज ही जगत माता की है। विश्व कल्याणकारी हो ना, हद का कल्याण करने वाले अनेक है। विश्व कल्याण की भावना की स्टेज है जगत माता। तो जगत माता की स्टेज पर होते अगर इन बातों में टाइम वेस्ट करे तो क्या समझेंगे? पंजाब की धरती पर कौरव गवर्नमेंट को नाज है, तो पांडव गवर्नमेंट को भी नाज है। पंजाब की विशेषता यह है जो बाप दादा के कार्य में मददगार फलस्वरूप सभी से ज्यादा पंजाब से निकले है। सिंध से निकले हुए निमित्त बने हुए रत्नों ने आप रत्नों को निकाला, अब फिर आप लोगों का कर्तव्य है ऐसे अच्छे रत्न निकालो, खिटपिट वाली न हो। आप लोगों द्वारा जो सबूत निकलना चाहिए वह अब अपनी चेकिंग करो, अपनी रचना से कब तंग हो जाते हो क्या? यह तो सभी शुरू से चलता आता है, आप लोगों के लिए तो और ही सहज है। आप लोगों को कोई स्थूल पालना नहीं करनी पड़ती, सिर्फ रूहानी पालना। लेकिन पहला पूर निकलने समय तो दोनों ही जिम्मेवारी थी। एक जिम्मेवारी को पूरा करना सहज होता है, दोनों जिम्मेवारी में समय देना पड़ता है, फिर भी पहला पूर निकला तो सही ना। अब आप सभी का भी यह लक्ष्य होना चाहिए कि जल्दी जल्दी अपने समीप आने वाले और प्रजा दोनों प्रकार की आत्माओं को अब प्रत्यक्ष करे। वह प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। अभी मेहनत ज्यादा करते हो, प्रत्यक्ष फल इतना दिखाई नहीं देता। इसका कारण क्या है? बाप दादा की पालना और आप लोगों की ईश्वरीय पालना में मुख्य अंतर क्या है, जिस कारण क्षमा के ऊपर जैसे परवाने फिदा होने चाहिए वह नहीं हो पाते? ड्रामा में पाठ है वह बात दूसरी है, लेकिन बाप समान तो बनना ही है ना। प्रत्यक्ष फल का यह मतलब नहीं कि दिन में वारिस बन जाएंगे, लेकिन जितनी मेहनत करते हो, उम्मीद रखते हो, उस प्रमाण भी फल निकले तो प्रत्यक्ष फल कहाँ जाए, वह क्यों नहीं निकलता? बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। एक तो निराकार होने के नाते से प्रलब्ध ही नहीं है तो इच्छा भी नहीं हो सकती, और साकार में भी प्रैक्टिकल पाठ बजाया तो भी हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। और यहाँ क्या होता है, जो कोई कुछ करते हैं तो यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का रहता है। जैसे वृक्ष में फल लगता जरूर है, लेकिन वहां का वहां ही फल खाने लगे तो उसका फल पूरा पककर प्रैक्टिकल में आवे वह कब न होगा, क्योंकि कच्चा ही फल खा लिया। यह भी ऐसे है, जो कुछ किया उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती जरूर है, तो किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई देवे? आधे में ही रह गया ना। फल की इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की है, जैसे अपार दुखों की लिस्ट है वैसे फल की इच्छाएं वाजो उसका रिस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प जरूर रहता है। कुछ ना कुछ 1-2% भी होता जरूर है। बिल्कुल निष्काम वृत्ति रहे ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ के प्रलब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो वह अवस्था बहुत कम है। मिसाल, आप लोगों ने किन्हों की सेवा की, 8 को समझाया, उसके रिजल्ट में 1-2 आपकी महिमा करते हैं और दूसरे ना महिमा ना ग्लानी करते हैं, गंभीरता से चलते हैं, तो फिर देखेंगे 8 में से आपका अटेंशन 1-2% में उन 2-3 तरफ ज्यादा जावेगा जिन्होंने महिमा की, उसकी गंभीरता की परख कम होगी। बाहर से जो उसने महिमा की उनको स्वीकार करने के संस्कार प्रत्यक्ष हो जावेंगे। दूसरे शब्दों में कहते हैं, इनके संस्कार इनका स्वभाव मिलता है। फलाने के संस्कार मिलते नहीं हैं, इसलिए दूर रहते हैं, लेकिन वास्तव में है यह सूक्ष्म फल को स्वीकार करना। मूल कारण यह रह जाता है, करेंगे और रिजल्ट का इंतजार रहेगा। पहले अटेंशन इस बात में जावेगा कि इसने मेरे लिए क्या कहा। मैंने भाषण किया, सभी ने क्या कहा, उसमें अटेंशन जावेगा, अपने को आगे बढ़ाने की एम से रिजल्ट लेना, अपनी सर्विस के रिजल्ट को जानना, अपनी उन्नति के लिए जानना, वह अलग बात है। लेकिन अच्छे और बुरे की कामना रखना वह अलग बात है। अभी अभी किया और अभी अभी लिया तो जमा कुछ नहीं होता है। कमाया और खाया उसमें विल पावर नहीं रहती, वह अंदर से सदैव कमजोर रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि खाली खाली है ना। भरी हुई चीज पावरफुल होती है, तो मुख्य कारण यह है। इसलिए फल पककर सामने आवे वह बहुत कम आते हैं। जब यह बात खत्म हो जावेगी तब निराकारी निरहंकारी और साथ साथ निर्विकारी मनसा वाचा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। शरीर में होते निराकारी आत्मिक रूप दिखाई देगा, जैसे साकार में देखा बुजुर्ग था ना, लेकिन फिर भी शरीर को न देख रूह ही दिखाई देता था। व्यक्त गायब हो अव्यक्त दिखाई देता था। तो साकार में निराकार स्थिति होने कारण निराकार व आकार दिखाई देता था। तो ऐसी अवस्था प्रैक्टिकल रहेगी। अब स्वयं भी बार बार देह अभिमान में आते हो तो दूसरे को निराकारी व आकार रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। यह तीनों ही होना चाहिए। मनसा में निराकारी स्टेज, वाचा में निरंकारी और कर्म में निर्विकारी, जरा भी विकार ना हो। तेरा मेरा शान मान यह भी विकार है। अंश भी हुआ तो वंश आ जावेगा। संकल्प में भी विकार का अंश ना हो। जब यह तीनों स्टेज हो जावेंगी तब अपने प्रभाव से जो भी वारिस व प्रजा निकलनी होगी वह फटाफट निकलेगी। आप लोग अभी जो मेहनत का अविनाशी बीज डाल रहे हो उसका भी फल और कुछ प्रत्यक्ष का प्रभाव दोनों इकट्ठे निकलेंगे। फिर क्विक सर्विस दिखाई देगी। तो अब कारण समझाना, इसका निवारण करना, सिर्फ वर्णन तक ना रखना। फिर क्या हो जावेगा? साक्षात्कार मूरत हो जावेंगे। तीनों स्टेज प्रत्यक्ष दिखाई देंगी। आजकल सभी यह देखने चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते। द्वापर से लेकर तो सुनते आए हैं, बहुत सुन सुन कर थक जाते हैं, तो मैजॉरिटी थके हुए है। भक्ति मार्ग में भी सुना और आजकल के नेता भी बहुत सुनाते हैं, तो सुन सुन कर थक गए, अब देखने चाहते हैं। सभी कहते हैं कुछ करके दिखाओ, प्रैक्टिकल प्रमाण दो तब समझेंगे कि कुछ कर रहे हो। तो आप लोग की प्रत्यक्ष हर चलन यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। तो अब प्रत्यक्ष चलन में आना है। जो फ्यूचर में महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है वह भी आपके फीचर से दिखाई दे। देखेंगे तो फिर वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जावेगा। एक तरफ वैराग्य, दूसरे तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आवेगा। जैसे कहते हो एक आंख में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति, तो विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट है। तो दोनों आंखों से यह दिखाई दे। यह पुरानी दुनिया जाने वाली है। आपके नैन और मस्तक यह बोले, मस्तक भी बहुत बोलता है। कोई का भाग्य मस्तक दिखाता है, समझते हैं यह बड़ा चमत्कारी है, तो ऐसी जब सर्विस करे तब जय जयकार हो। तो अब विश्व के आगे एक सैंपल बनना है। अनेक स्थान सेंटर्स होते हुए भी सभी एक हो, सभी बेहद बुद्धि वाले हो, बेहद के मालिक और फिर बालक। सिर्फ मालिक नहीं बनना है, बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। एक दो के हर राय को रिगार्ड देना है, चाहे छोटा है वा बड़ा है, चाहे आने वाला स्टूडेंट है, चाहे रहने वाला साथ है। हर एक की राय को रिगार्ड जरूर देना चाहिए। कोई की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। पहले तो जरूर रिगार्ड देना चाहिए, फिर भले कोई समझानी दो वह दूसरी बात है। पहले से ही कट ना करना चाहिए कि यह रॉन्ग है, यह हो नहीं सकता। यह उसकी राय का डिसरिगार्ड करते हो। इससे फिर उनमें भी डिसरिगार्ड का बीज पड़ता है। जैसे माँ बाप घर में होते हैं तो नेचुरल बच्चों में वह संस्कार होते हैं माँ बाप को कॉपी करने के। माँ बाप कोई बच्चों को सिखलाते नहीं है, यह भी अलौकिक जन्म में बच्चे हैं। बड़े माँ बाप के समान होते हैं, इसलिए आज आपने उनकी राय का डिसरिगार्ड किया, कल आपको वह डिसरिगार्ड देगा, तो बीज किसने डाला? जो निमित्त है। चूहा पहले फूंक देकर फिर काटता है, तो व्यर्थ को कट भी करना हो तो पहले उनको रिगार्ड दो, फिर उसको कट करना नहीं, लेकिन समझेंगे हमको श्रीमत मिल रही है। रिगार्ड दे आगे बढ़ाने में वह खुश हो जाएंगे। किसको खुश कर फिर कोई काम भी निकालना सहज होता है। एक दो की बात को कब कट नहीं करना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, यह शब्द भी रिगार्ड देंगे। पहले ना की तो नास्तिक हो जाएंगे। पहले सदैव हाँ करो। चीज भले कैसी भी हो लेकिन उसका बिठन अच्छा होता है तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब संपर्क में आते हो तो अपना शब्द और स्वरूप भी ऐसा हो। ऐसे नहीं कि रूप में फिर ना की रूपरेखा हो। इसमें रहम और शुभ कल्याण की भावना से चेहरे में कब चेंज नहीं आवेगी। शब्द भी युक्त युक्त निकलेंगे। बाप दादा भी किसको शिक्षा देते हैं तो पहले स्वमान दे फिर शिक्षा देते हैं। तो आजकल जो भी आते हैं वह अपने मान लेने वाले, ठुकराए हुए को स्वमान रिगार्ड चाहिए। इसलिए कब भी किसको डिसरिगार्ड नहीं, पहले रिगार्ड देकर फिर काटो। उनकी विशेषता का पहले वर्णन करो फिर कमजोरी का। जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से शुद्ध बुद्ध भुलाते हैं, तो पहले उसको रिगार्ड से उस नशे में ठहराओ। फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा, यह भी एक तरीका है। जब यह संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। अगर आत्माओं को कम रिगार्ड देंगे तो प्रलब्ध में भी कम रिगार्ड मिलेगा। अच्छा, ओम शक्ति।